नमस्कार भारत, 14 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं वात्सल्य राय। गजा में जारी हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक।
The United States is just putting forward the Israeli foreign policy on this matter.
जिक्र श्रीलंका के सियासी संकट का।
सुप्रीम कोर्ट कहा है इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का कोई भी इंतजाम अभी शुरू करने की जरूरत नहीं है।
रफाल सौदे पर सफाई और आरोपों के सिलसिले की भी बात।
फैसला पहले हुआ और प्रक्रिया फिर उसके अनुसार बिठाई गई उसके ऊपर अमली जामा पहनाने।
और मिलवाएंगे अमेरिका की क्रिस्टीन से जो गाती हैं छटके गीत। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। गजा में जारी हिंसा के मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक हुई, लेकिन हिंसा को रोकने को लेकर कोई कदम उठाने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वहीं फिलिस्तीनी गुटों ने मिस्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम पर हामी भर दी है। श्रीलंका में सियासी संकट का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के संसद भंग करने के फैसले पर 7 दिसंबर तक रोक लगा दी है। श्रीसेना ने करीब 2 हफ्ते पहले रानिल विक्रमासिंघे को बर्खास्त करते हुए महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया था। इसके बाद पिछले हफ्ते उन्होंने संसद भंग करते हुए चुनाव कराने का ऐलान किया था। कई महीनों से चली आ रही बातचीत के बाद ब्रेग्जिट के ड्राफ्ट को लेकर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच सहमति बन गई है। अब प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस संबंध में मंत्रियों का समर्थन जुटाने के लिए बुधवार को विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है। हालांकि पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन और ब्रेग्जिट के समर्थक जैकब रॉय मॉग ने इस ड्राफ्ट में मौजूद उन बातों की आलोचना की है जो मीडिया में सामने आई है। इस संबंध में बोरिस जॉनसन ने कहा, ये ड्राफ्ट ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के नियंत्रण में ला देगा। हजारों सालों में ये पहली बार होगा जब संसद का उन कानूनों पर कोई जोर नहीं होगा जिनसे देश चलता है। जो भी लोकतंत्र में भरोसा रखता है उसके लिए यह अस्वीकार्य है। ये थे ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बाद अब जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने समान यूरोपीय सेना का समर्थन किया है। कुछ दिनों पहले इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संसद में बोलते हुए समान यूरोपीय सेना की बात कही थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी आलोचना की थी और नाटो के लिए भुगतान का मसला उठाया था। लेकिन अब एंगेला मर्केल भी इसके पक्ष में आ गई हैं। उन्होंने कहा, हमें एक यूरोपीय रैपिड रिस्पांस फोर्स बनानी होगी ताकि जमीन पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। हमें रक्षा में पहले ही सहयोग प्राप्त कर लिया है। हमें एक दिन सच्ची यूरोपीय सेना बनाने की परिकल्पना पर काम करना होगा। ये थे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली की कैबिनेट ने यूरोपीय आयोग की आपत्तियों का विरोध करते हुए अपने बजट के साथ बने रहने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ ने इटली के बजट प्रस्ताव को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे बजट घाटे में वृद्धि होगी। लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद इटली के उप प्रधानमंत्री माटेओ सेल्विनो ने कहा कि उनकी सरकार 2.4% के घाटे के और 1.5% वृद्धि के लक्ष्य पर बनी रहेगी। यूरोपीय आयोग को इन दोनों ही लक्ष्यों पर आपत्ति थी। मेक्सिको के रास्ते अमेरिका आ रहा मध्य अमेरिकी प्रवासियों का पहला समूह मेक्सिको अमेरिका की सीमा पर स्थित शहर तिजुआन पहुंच गया है। मध्य अमेरिकी देशों में भुखमरी और गरीबी से परेशान होकर आए लोग अमेरिका में शरण चाहते हैं। वहीं अमेरिका सीमा पर सुरक्षा बढ़ा रहा है। इसके लिए सैनिक सीमा पर कांटेदार तारे और बैरिकेड लगा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटी भी बुधवार को सीमा का दौरा करने वाले हैं। सिंगापुर में एक 19 कैरेट का गुलाबी हीरा 5 करोड़ डॉलर में बिका है। एक अमरीकी लग्जरी ज्वेलर हैरी विंस्टन ने इस हीरे को खरीदा है। यह हीरा एक दशक पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला था। यह ऐसे 4 गुलाबी हीरों में से एक है जिनका वजन 10 कैरेट से ज्यादा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI का कहना है कि अमरीका में लगातार तीसरे साल हेट क्राइम्स यानी नफरत के कारण किए गए अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। यह एजेंसी के मुताबिक साल 2017 में हेट क्राइम्स में 17% की वृद्धि हुई है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में आज आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। बीबीसी हिंदी से दिन के पहले कार्यक्रम को आप bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज राजधानी दिल्ली के आसमान पर बादल छाए हुए हैं, तड़के हल्की बारिश भी हुई है। इन बादलों की मौजूदगी बीते कुछ दिन से प्रदूषण की चादर से घिरे दिल्ली वासियों को राहत दे रही है, लेकिन छठ पर्व मना रहे वो लोग जो आज उगते सूर्य को अर्घ देने वाले हैं, उन्हें बादलों का घेरा रास नहीं आ रहा होगा। दिल्ली में आज सूर्योदय का वक्त है 6:43, यानी अब से करीब 8 मिनट के बाद। बादलों की गोद से सूरज निकलने का इंतजार उन बच्चों को भी होगा जिनके लिए 14 नवंबर यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन उनका दिन यानी बाल दिवस होता है। संकट के बादलों के घेरे की बात करें तो ये दिल्ली से कई हजार किलोमीटर दूर गजा पर भी छाया हुआ है। नमस्कार भारत में सबसे पहले बात इसी संकट की। गजा में इसराइल और हमास के बीच हिंसा जारी है। यह बीते 4 सालों का सबसे भीषण संघर्ष बताया जा रहा है। इसे लेकर अब से कुछ वक्त पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर फैसला नहीं हो सका। उधर फिलिस्तीनी गुटों ने मिस्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम पर हामी भर दी है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच गजा में जारी ताजा संकट के बारे में सुरक्षा परिषद के सदस्यों को जानकारी दी। ये बैठक कुवैत और बोलिविया के कहने पर बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में गजा में ताजा संकट से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कोई फैसला नहीं लिया है। बोलिविया के दूत साशा लोरेंटी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच मामला अधर में लटका है। अमरीका तो इस मामले में इसराइल की विदेश नीति को ही आगे बढ़ाता है। हम तो ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बारे में कुछ करे, और खास बात यह है कि इस मामले में हल के लिए एक ईमानदार बिचौलिए की जरूरत है। बोलिविया के दूत साशा लोरेंटी के शब्द। उधर गाजा में शासन चलाने वाले फलस्तीनी गुट हमास ने अन्य फलस्तीनी गुटों के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें मिस्र की मध्यस्थता पर इसराइल के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की गई, लेकिन इसराइल की ओर से इस सिलसिले में कोई बयान नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के दूत डैनी डनॉन ने एक बयान जारी कर कहा कि इसराइल ऐसी कोई मांग नहीं मानेगा जिसमें इसराइल और हमास दोनों से संयम बरतने को कहा जाता है। इसराइली दूत ने कहा कि हमास इसराइल पर 400 से अधिक मिसाइलें दाग रहा है और इसराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है। इसराइली हमलों में 7 फलस्तीनी मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। इसराइल ने गाजा में कई इमारतों को भी निशाना बनाया, जिनमें एक टीवी स्टेशन भी शामिल है। इसराइली सेना के अनुसार हमास और इस्लामी जिहाद के गजा स्थित 20 ठिकानों को विमानों और टैंकों के जरिए निशाना बनाया गया। इसराइल का कहना है कि गजा से इसराइल की ओर 400 से अधिक रॉकेट और मोर्टर दागे गए, जिसके बाद इसराइल की सेना ने गजा पर हमला किया। 2014 के बाद हमास के खिलाफ इसराइल का यह सबसे बड़ा हमला है। इन झड़पों की शुरुआत के एक दिन पहले इसराइल ने गजा में एक गोपनीय अभियान चलाया था, जिसमें 7 चरमपंथियों और इसराइल के एक सैनिक की मौत हो गई थी। सन 2008 के बाद से इसराइल और गजा में रहने वाले फलस्तीनी गुटों के बीच अब तक 3 बार युद्ध हो चुका है, और इस साल मार्च महीने से गजा और इसराइल की सीमा पर फलस्तीनियों और इसराइली फौजियों के बीच झड़पें होती रही हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
उधर संकट के बादलों का घेरा श्रीलंका की सियासत पर भी बना हुआ है। कल श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये संकट और भी उलझ गया है। बीते शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने संसद भंग करते हुए 5 जनवरी को चुनाव कराने का ऐलान किया था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं कमलेश मठेनी।
श्रीलंका में सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक उलझन बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के संसद भंग करने के फैसले पर रोक लगा दी है। सिरीसेना ने करीब 2 हफ्ते पहले रानिल विक्रमासिंघे को बर्खास्त करते हुए महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया था, और बीते शुक्रवार को संसद भंग करते हुए चुनाव कराने का ऐलान किया था। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के फैसले पर 7 दिसंबर तक रोक रहेगी। कोर्ट के इस फैसले को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने जनता की जीत बताया है। वहीं विक्रमासिंघे की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के डिप्टी लीडर साजिद प्रेमदास ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत का क्षण कहा। उन्होंने कहा,
दिस इज अ टाइम टू यूनाइट।
یہ ایک ہونے کا سمے ہے, یہ سنشچت کریں کہ نیائے اور نشپکشتا بنی رہے. اس وقت لوکتنتر کو بڑھاوا دینا چاہیے, نہ کہ راجنیتک دشمنی کو. یہ تھے یونائیٹڈ نیشنل پارٹی کے ڈپٹی لیڈر ساجد پریمداس کے شبد. اس فیصلے کے بعد سبھاپتی کارو جے سوریا نے کہا کہ بدھوار کو سنسد اسی طرح چلے گی جیسے عام طور پر چلتی ہے. شری لنکا میں اس سیاسی سنکٹ کی شروعات 26 اکتوبر سے ہوئی تھی جب راشٹرپتی سیری سینا نے پردھان منتری رانل وکرما سنگھے کو ہٹا کر مہندا راجپکشے کو دیش کا نیا پردھان منتری گھوشت کر دیا تھا. سال 2015 میں راجپکشے کو سری سینا نے راشٹرپتی چناؤ میں ہرایا تھا. سری سینا راشٹرپتی بنے تھے اور انہوں نے رانل وکرما سنگھے کو پردھان منتری بنایا تھا. تین ورشوں میں ہی سری سینا اور وکرما سنگھے کے بیچ دوریاں بن گئی اور راجپکشے موجودہ راشٹرپتی کے قریب آ گئے, لیکن ابھی انہوں نے سنسد میں بہومت ثابت نہیں کیا ہے.
رپورٹ سنا رہی تھی کملیش مٹھینی. شری لنکا میں سیاسی سنکٹ کی شروعات کیسے ہوئی, راشٹرپتی سری سینا اور رانل وکرما سنگھے کے بیچ وواد کی اصل وجہ کیا ہے, انہی سوالوں کے ساتھ ہمارے ساتھی نوین نیگی نے بات کی شری لنکا کی راجنیتی پر نظر رکھنے والے ورشٹھ پترکار ایس وینکٹ نارائن سے.
یہ کافی مہتوپورن ڈیسیشن ہے جی, حالانکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایسا ہولڈ اپ کیا گیا ہے, لیکن یہ پھر سے 4, 5 اور 6 دسمبر کو پھر سنوائی شروع ہوئے گی. لیکن سپریم کورٹ یہ بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ 5 جنوری کو جو پارلیمنٹری الیکشنز کے بارے میں سریسینا پریزیڈنٹ سریسینا نے کہا ہے, وہ آپ اس کا کوئی بھی انتظام ابھی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر پارلیمنٹ کو پھر سے بلا سکتے ہیں اور پرانے پردھان منتری رانیل وکرم سنگھا اور نئے پردھان منتری جو اپوائنٹ کیے گئے تھے سری سینا سے, یہ دونوں کے بیچ میں کس کے پاس میجورٹی ہے یہ پروو کرنے کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے.
پورے راجنیتک اتھل پتھل سے شری لنکا کیسے بچ سکتا تھا, اور کیا ابھی بھی کیا اپائے ہیں جس کے ذریعے یہ بچا جا سکے کہ اس طریقے کی جو راجنیتک سنگھرش جو چل رہا ہے وہ ختم ہو؟
بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار شری لنکا کی ہسٹری میں دو میجر سنگلسٹ پارٹیز یو این پی اور ایس ایل ایف پی مل کے راج کرنے کو آئے تھے, لیکن بات نہیں بنی. یہ سریسینا کا ایک گاؤں کے آدمی ہے اور وکرم سنگھا ایک ایلیٹسٹ ہے, پڑھے لکھے اور ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ کائنڈ آف پریوار سے آئے ہوئے ہیں, یہ دونوں کی تال میل نہیں ہو رہی تھی. اور وکرم سنگھا اپنے آپ کو نرنے لے رہے تھے بغیر سریسینا کو بتاتے ہوئے, اور اس کو سریسینا خارج کیا کرتے تھے. سو اس طرح پچھلے جنوری 2015 سے جو یہ سرکار چل رہی ہے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھا سرکار دیں گے, لیکن کوئی سرکار ہی وہاں صحیح طرح کام نہیں کر رہا تھا. اور یہ دونوں مل کے کام کرنا آئندہ ناممکن ہے, کیونکہ سری سینا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وکرم سنگھے اپنا میجارٹی پارلیمنٹ میں پروو کریں گے تو پردھان منتری رہیں گے, میں ایک گھنٹے تک بھی راشٹرپتی کے پدوی میں نہیں بیٹھوں گا.
اور کیا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ جو سارا اتھل پتھل ہے یہ سری سینا کے فیصلے کے چلتے ہوا, تو کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے شری لنکا کی راجنیتی میں کہ سری سینا کو ہی ان کے پد سے کوئی ہٹا دے؟
یہ اب تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. پریزیڈنٹ وہاں زبردست کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 کے مطابق وہ آل پاورفل ہے, ان کو کوئی بھی ہٹانا ناممکن ہے. مجھے اب یہ کیا وہاں کے راشٹرپتی کو ہٹا دیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک تو ایسا چرچا نہیں ہوا ہے. اگر یہ لوگ سوچیں گے کچھ کریں گے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی بھی وہاں, یہ تو میجر ڈیسیزن ہوگا, پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی ہوگا. اگر شاید وہ نو کانفیڈنس پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن موو کریں گے وکرم سنگھا وغیرہ, ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اب تک اس دیش کا ہسٹری میں پریزیڈنٹ کبھی بھی ہٹایا نہیں گیا ہے.
یہ تھے ورشٹھ پترکار ایس وینکٹ نارائن.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 49, 41 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 5875, 7430, 11995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
اور اب بات بھارت کی. سپریم کورٹ میں آج رفال معاملے کی سنوائی ہوگی. رفال لڑاکو ویمانوں کو لے کر بھارتیہ راجنیتی میں بھی سنگرام جاری ہے. کانگریس اس سودے کو لے کر لگاتار آروپ لگا رہی ہے, وہیں ویمان بنانے والی کمپنی دسو ایویشن کے سی ای او نے कांग्रेस के तमाम आरोपों को गलत बताया है। उनके बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है तो कांग्रेस भी आक्रामक बनी हुई है। सुनिए नवीन नेगी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने वायु सेना से 30,000 करोड़ रुपए छीनकर अपने मित्र अनिल अंबानी के जेब में डाला है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी किसी भी चुनावी रैली में राफेल सौदे का जिक्र करना शायद ही भूलते हैं। इसके जरिए राहुल सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का मौका तलाशते हैं और उन्हें लगता है कि आने वाले चुनावों में राफेल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन राफेल सौदे को लेकर मचा सियासी घमासान लगातार नया मोड़ लेता रहता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सौदे में रिलायंस समूह को शामिल करने पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच इस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी दसौ एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रेपियर ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। ट्रेपियर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने खुद अनिल अंबानी की कंपनी को सौदे के लिए चुना था। ट्रेपियर ने कहा है कि वे कई दूसरे साथियों की तलाश कर रहे हैं। इस सौदे में रिलायंस सहित 30 साथी और हैं। ट्रेपियर ने इस सौदे में गड़बड़ियों के सवाल को गलत बताया और कहा कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। ट्रेपियर ने यह दावा भी किया कि 36 विमानों के सौदे की कीमतों में एनडीए सरकार के दौरान लगभग 9% की कमी आई है। ट्रेपियर की ओर से आए इस बयान के बाद बीजेपी मुखर होकर सामने आ गई। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने के आरोप लगाए। अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे बयानों पर ही टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने आरोपों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर दोहराया कि इस मामले में सरकार ने गड़बड़ियां की हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा,
शक इसलिए होता है कि जो 36 जहाज खरीदने का फैसला था उसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलती है जून 2015 में और फैसले का ऐलान हो जाता है 10 अप्रैल 2015 को। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कि भाई हाँ 36 जहाजों की जरूरत है वो फैसला करती है, उस निर्णय के 3 महीने पहले ऐलान हो जाता है कि हम 36 जहाज खरीदेंगे। तो इससे तो ये व्यतीत होता है कि फैसला पहले हुआ और प्रक्रिया फिर उसके अनुसार बिठाई गई उसके ऊपर अमली जामा पहनाने।
इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने पर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने मानी अपनी चोरी। राहुल ने लिखा कि हलफनामे में माना गया कि उन्होंने बिना वायुसेना से पूछे कॉन्ट्रैक्ट बदला और 30,000 करोड़ रुपया अंबानी की जेब में डाला। पिक्चर अभी बाकी है। राफेल सौदे पर इससे पहले फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान के बाद भी काफी बवाल मचा था। उस समय ओलांद ने कहा था कि भारत सरकार ने उनके सामने इस सौदे में रिलायंस के अलावा कोई दूसरा विकल्प चुनने का मौका ही नहीं रखा। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि राफेल सौदे पर सियासी घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है और अभी इसकी कई परतें खुलनी बाकी हैं, यानी अभी इस सौदे की पिक्चर सचमुच बाकी है। नवीन नेगी, BBC, दिल्ली।
और अब कमलेश मठेनी से जान लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। जी कमलेश।
हाँ वासल्य जी, आज हम देख सकते हैं, जैसे आपने बताया था 14 नवंबर है और जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, उसके अलावा बाल दिवस भी है। तो हम देखें कई अखबारों में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दी गई है ऊपर की तरफ और साथ ही हंसते खेलते बच्चों की तस्वीर भी है, रंग बिरंगी सी तस्वीर भी दी गई है जिसमें लिखा है
के दोनों तरफ ये तस्वीर है, मैं देख पा रहा हूं, खासकर हिंदी अखबारों में
जी। और इसके अलावा छठ पर्व को लेकर, छठ पूजा को लेकर महिलाओं की तस्वीर है, वो पानी में खड़ी है और डूबते सूरज को अर्घ्य दे रही है, कई अखबारों ने इस तरह की तस्वीर दी है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर सबरीमला मंदिर से जुड़ी हुई खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश को जारी रखा है। कोर्ट ने इस फैसले के विरोध में जो याचिकाएं दायर की गई थी उन पर 22 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला सुनाया है। और इसके अलावा आज हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि सोनिया गांधी ने, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा है कि सत्ता में मौजूद लोग जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेहरू जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया था आज उनको चुनौती दी जा रही है। सोनिया गांधी जो है कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पुस्तक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया के पुनर्विमोचन के अवसर पर बोल रही थी। इसके अलावा अमर उजाला में खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान देशों की बैठक के लिए सिंगापुर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वह अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ भी बैठक करेंगे।
जी, 2 दिन का इनका ये दौरा है।
जी और इसके अलावा कई अखबारों ने राफेल विमान से जुड़ी खबर दी है, कई अखबारों ने उसे लीड भी किया है। हम अगर जनसत्ता ने भी इसको लीड खबर के साथ में दिया है, उसे पढ़े तो इस फ्रांस की कंपनी राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ के सीईओ एरिक ट्रैपर ने कहा है कि कंपनी ने खुद रिलायंस डिफेंस को चुना था सौदे के लिए, और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं सौदे में गड़बड़ी का, वो आरोप सारे गलत हैं।
जी, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।
जी, और अब हम प्रदूषण की बात करते हैं। एनबीटी में एक खबर है, बहुत अजीब खबर है जो पढ़ने में लगी, कि बोतल में बंद करके ताज़ी हवा मिल रही है। ऐसी कुछ विदेशी कंपनियां हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो 7.5 लीटर की बोतल में कुछ पैसों में जो है 15 लीटर हवा
जी,
दे रही है।
बोतल बंद पानी मिलता था, बोतल बंद हवा है
जी,
प्रदूषण का ये आलम है। बहुत शुक्रिया कमलेश मठेनी अखबारों की समीक्षा के लिए।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब बात लोक आस्था के पर्व छठ की। देश के कई हिस्सों में छठ मना रहे लोग आज उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। छठ की धूम सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिखाई देती है, अमरीका में भी इस प्रकृति पर्व के सुर सुनाई देते हैं। सुनिए सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
एंड आई होप दैट ऑल बीबीसी हिंदी व्यूअर्स विल एंजॉय। केनवा के बाद पर हो गए लन सूरज माले झके झूके बेकार लू छट पर दिया से झके झूके।
यह आवाज है 43 साल की क्रिस्टीन गेजो की। अमेरिकी नागरिक क्रिस्टीन को 2 साल पहले ही छठ के बारे में मालूम चला है। सूर्य की उपासना के इस पर्व से वो कुछ यूं आकर्षित हुई कि उन्होंने छठ के लोकगीतों को अपनी आवाज दी। वो बताती हैं कि एक फेसबुक फ्रेंड के जरिए उन्होंने गीतों का भाव समझा और उसे अपनी आवाज दी, जिसे अब तक लाखों लोग सुन चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में रहने वाली क्रिस्टीन से मिलो दूर पटना के घाटों पर भी छठ व्रती अपने आराध्य को पूज रहे हैं। छठ मुख्य रूप से अविभाजित बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें अस्ताचलगामी और उदयीमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए और फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पर्व में सामूहिकता और सामाजिक समरसता की भावना प्रधान है, इसलिए छठ ही वो मौका होता है जब देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में बसे लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटते हैं। साल 2014 में युवा कवि और पत्रकार कुमार रजत ने छठ के इसी नजरिए को कविता में ढाला तो वो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। रजत की कविता की कुछ पंक्तियाँ उनकी ही आवाज में सुनिए।
ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उसके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है, उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। ये छठ जरूरी है गागर नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए।
लेकिन कृषि संस्कृति पर आधारित इस पर्व में दबे पांव राजनीति भी अपनी जगह बना रही है। गुजरात में साबरमती नदी में छठ घाट बनना और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का छठ को लेकर बयान छठ में राजनीति की घुसपैठ का संकेत है। आलम यह है कि छठ के पारंपरिक लोकगीतों के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार की परेशानियां और छठी मैया की महिमा के इर्द गिर्द बुने गीत इस बार लॉन्च हुए हैं, जिनके यूट्यूब पर व्यूज भी लाखों की तादाद में है। वरिष्ठ पत्रकार एस ए शाद कहते हैं कि छठ का संस्थानीकरण का श्रेय बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जाता है। यही वजह है कि इस बार जब वो छठ नहीं कर रही और परिवार के सामने कई मुसीबतें हैं, तो उनके समर्थक ऐसे गाने लॉन्च कर रहे हैं।
लालू प्रसाद जब चीफ मिनिस्टर बने उसी टाइम से राबड़ी देवी छठ करती थी, तो एक चीफ मिनिस्टर हाउस में जब छठ होने लगा तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज दिया और इसकी पॉपुलरिटी और बढ़ी। और फिर जब राबड़ी देवी खुद बनी चीफ मिनिस्टर और उसके बाद उन्होंने खुद छठ करना शुरू किया, तो एक तरीके से कहिए कि उन्होंने छठ को इंस्टीट्यूशनलाइज किया।
लेकिन राजनीति से इतर सबसे बड़ा संकट जो फिलहाल छठ के सामने है वो प्रकृति का है। छठ के लोकगीतों में पटना के गंगा घाटों का जिक्र है, लेकिन गंगा, दूसरी नदियां, तालाब जिनके संरक्षण का संदेश छठ पर्व के लोकगीतों में है वो गायब होते जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग अब घरों में कृत्रिम तालाब बना करके पूजा कर लेते हैं। 1998 से गंगा बचाने के लिए लगातार संघर्षरत गुड्डू बाबा कहते हैं,
वो तो जब से गंगा को बचाओ अभियान का हम लोगों ने शुरुआत किया था 98 से, उस समय से लेकर आज तक यह दुर्भाग्य है और राज्य सरकार चली और रही है कि लोगों को सीवरेज के पानी, जो गंदा पानी जाता है, उसी के बीच खड़े होकर अर्घ देना पड़ेगा।
छठ वह पर्व है जिसमें वैज्ञानिक सोच, सभ्यता और हमारी संस्कृति का अद्भुत मिलन है। इसमें साक्षात सूर्य देवता की पूजा है जो हम सब पर अपनी रोशनी समान रूप से फैलाते हैं। आइए हम सब भी उसी तरह समानता और समरसता के मूल्यों को अपनाएं जैसे हमारे आराध्य सूर्य अपनाते हैं। सीतू तिवारी, BBC, पटना।
जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया था, आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 129वां जन्मदिन है। आजादी की लड़ाई के नायकों में शामिल रहे पंडित नेहरू गांधीवादी थे, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलने की वकालत करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नेहरू ने पिस्तौल निकाल ली थी। हमारे वरिष्ठ साथी रेहान फजल ने अपनी विवेचना सीरीज में इसका जिक्र किया। वो लिखते हैं, बात 1947 की है। विभाजन के बाद सीमा के दोनों ओर इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया था, चाहे लाहौर हो या कोई और जगह। हत्या और लूट का तांडव मचा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को अचानक खबर मिली कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं। जब नेहरू वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस तो खड़ी तमाशा देख रही है और हिंदू और सिख दंगाई मुसलमानों की दुकानों से औरतों के हैंडबैग, कॉस्मेटिक और मफलर लेकर भाग रहे हैं। नेहरू को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पास खड़े एक पुलिस वाले के हाथ से लाठी छीनकर दंगाइयों को दौड़ा लिया। ये भी उनकी शख्सियत का एक रंग था। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सुबह सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हांगकांग, जहां पर बैडमिंटन में हांगकांग ओपन खेला जा रहा है। और आज बैडमिंटन के कोर्ट पर आपको दिखेंगी पीवी सिंधु थाईलैंड की खिलाड़ी निचतोन जिंदापोल से मुकाबला करते हुए। तो वहीं साइना नेहवाल का मुकाबला होगा जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची के साथ। तो मेन सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला होगा हांगकांग की खिलाड़ी वॉन्ग विंग की विंसेंट के साथ। और HS प्रणय भिड़ेंगे डेनमार्क के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन के साथ। ये तो आज के मुकाबलों की बात हुई। आपको बता दें 13 नवंबर से हांगकांग ओपन शुरू हुआ है जो 18 नवंबर तक चलेगा। इस मुकाबले में मेन ड्रॉ में अपनी जगह बना चुके हैं पारुपल्ली कश्यप और आज उनका मुकाबला है इंडोनेशिया के खिलाड़ी एंथनी सिनिसुका के साथ। तो वहीं ATP टूर्स फाइनल्स की बात करें जो टेनिस का मुकाबला है, तो वहां पर आज मुकाबला है नोवाक जोकोविच का अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के साथ जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, और मारिन चिलिक USA के खिलाड़ी जॉन इस्नर के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगे।
और चलते चलते मुख्य समाचार कमलेश से।
गजा में जारी हिंसा के मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक हुई, लेकिन हिंसा को रोकने को लेकर कोई कदम उठाने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। श्रीलंका में सियासी संकट का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के संसद भंग करने के फैसले पर 7 दिसंबर तक रोक लगा दी है। कई महीनों से चली आ रही बातचीत के बाद ब्रेग्जिट के ड्राफ्ट को लेकर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच सहमति बन गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बाद अब जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने समान यूरोपीय सेना का समर्थन किया है। कुछ दिनों पहले इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संसद में बोलते हुए समान यूरोपीय सेना की बात कही थी। इटली की कैबिनेट ने यूरोपीय आयोग की आपत्तियों का विरोध करते हुए अपने बजट के साथ बने रहने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ ने इटली के बजट को कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे बजट घाटे में वृद्धि होगी। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजित सारथी। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।